नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जया भारती। मुख्य समाचार। दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए। पूर्व राजनयिक तरनजीत सिंह संधू कल दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने दिल्ली और फरीदाबाद को उत्तर प्रदेश के जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ने के लिए नई सड़क निर्माण परियोजना को मंजूरी दी। राजपुर रोड पर सीवर लाइन बिछाने के कार्य के मद्देनजर आज से 25 मार्च तक विशेष यातायात व्यवस्था लागू। राजपुर अथॉरिटी मोड़ से दिल्ली नगर निगम चौक तक राजपुर रोड मालवाहक वाहनों के लिए बंद रहेगा। और खाद्य तथा आतिथ्य उद्योग से जुड़ा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आहार का आज नई दिल्ली में शुभारम्भ। दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए हैं। न्यायालय ने अगली सुनवाई की तारीख 19 मार्च तय करते हुए कहा कि इस मामले में उचित अंतरिम आदेश पारित किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य सभी आरोपियों को बरी करते समय निचली अदालत द्वारा निदेशालय के खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से अपर सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने बताया कि निचली अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा दर्ज एक मामले के फैसले में निदेशालय के खिलाफ टिप्पणियां की थीं। उन्होंने कहा कि जब ये टिप्पणियां की गई तब धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत धन शोधन का मामला विशेष न्यायालय के समक्ष विचाराधीन नहीं था। पूर्व राजनयिक तरनजीत सिंह संधू कल दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह लोक निवास में आयोजित किया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री संधू को 23वें उपराज्यपाल के रूप में शपथ दिलाएंगे। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई इनक्यूबेशन नीति पर काम कर रही है। इसके अंतर्गत अगले 5 वर्षों में लगभग 325 करोड़ रुपए का निवेश कर वर्ष 2035 तक करीब 5000 स्टार्टअप्स को समर्थन दिया जाएगा। श्री सूद ने आज भारतीय उद्योग परिसंघ के दिल्ली स्टेट वार्षिक सत्र 2025-26 और व्यापार सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही।
विकसित दिल्ली 2047 तो तब बनेगी जब उद्यमी, उद्यम में काम करने वाले लोग, उनके लिए पॉलिसी बनाने वाले लोग यानी सरकार, कर्मचारी और इंडस्ट्री सब एक तरीके से दिल्ली के भविष्य के लिए सोचे। और हमने इन सब बड़े बिजनेस हाउसेस से पॉलिसी के दृष्टिकोण से, रोजगार के सृजन के दृष्टिकोण की ओर से और सीएसआर के माध्यम से दिल्ली में सुधार के दृष्टिकोण से मदद के लिए सोचे।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के दिल्ली फरीदाबाद बल्लभगढ़ सोहना सेक्शन से जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जोड़ने के लिए सड़क निर्माण के लिए 3630 करोड़ 77 लाख रुपए मंजूर किए हैं। करीब 31.5 किलोमीटर लंबे इस गलियारा से दक्षिण दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम से जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक सीधी और तेज कनेक्टिविटी होगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में बताया कि इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आर्थिक विकास और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ावा मिलेगा।
जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश से हरियाणा और दिल्ली से भी रोड काफी एरिया में एलिवेटेड रहेगा और ये जेवर एयरपोर्ट को फरीदाबाद के एरिया से कनेक्ट कराएगा। यही आगे कनेक्टिविटी फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे आ जाती है। तो एक तरीके से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, इन दोनों का जेवर एयरपोर्ट के साथ कनेक्टिविटी।
मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में जल शक्ति मंत्रालय के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अंतर्गत जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन को बुनियादी ढांचे के निर्माण से लेकर सेवा वितरण के स्तर तक पुनर्गठित किया जाना है।
इस जल जीवन मिशन का 2.0 वर्जन अप्रूव हुआ। 1.0 वर्जन इतना महत्वाकांक्षी, इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, करीब 13 करोड़ परिवारों तक पहुंचा नल से जल। अब इन सारे प्रोजेक्ट्स की ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, वाटर सोर्स, सोसाइटी को जितनी डिफरेंट जो कमिटीज बनी है, विलेज की कमिटी, ग्राम सभा की कमिटी, पंचायत की कमिटी, इन सबको इन्वॉल्व करना, फिर जहां पे पॉपुलेशन बढ़ रही है वहां पे नए सोर्सेज निकालना, एक तरीके से अब इसको सस्टेनेबल बनाने का टाइम आया। शुरू में टेक ऑफ करना, कवरेज लाना, अब है इसको सस्टेनेबल बनाना।
मंत्रिमंडल ने इसके साथ ही एक समान राष्ट्रीय डिजिटल ढांचा सुजलम भारत स्थापित करने को भी मंजूरी दी। इसके तहत प्रत्येक गांव को एक विशिष्ट सुजल गांव आईडी आवंटित किए जाएंगे। इससे स्रोत से नल तक संपूर्ण पेयजल आपूर्ति प्रणाली का डिजिटल मानचित्रण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया में मौजूदा स्थिति को देखते हुए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए प्राकृतिक गैस के उत्पादन को विनियमित करने, आपूर्ति बनाए रखने, समान वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू किया है। एक रिपोर्ट।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार घरेलू पाइपलाइन प्राकृतिक गैस आपूर्ति, परिवहन के लिए सीएनजी, एलपीजी उत्पादन, पाइपलाइन कंप्रेसर ईंधन और अन्य आवश्यक पाइपलाइन परिचालन आवश्यकता वाले क्षेत्रों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में प्राथमिकता दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि आपूर्ति को पिछले 6 महीनों की औसत गैस खपत के 100% परिचालन उपलब्धता के अधीन बनाए रखा जाएगा। आदेश में कहा गया है कि उर्वरक संयंत्रों को पिछले 6 महीनों की औसत गैस खपत के 70% के बराबर प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
इस बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आश्वासन दिया है कि देश में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की कोई कमी नहीं है और इसे लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री पुरी ने आज कहा कि भारत विभिन्न स्रोतों और मार्गों से ईंधन का आयात लगातार जारी रखे हुए है। उन्होंने कहा कि सरकार देश के घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ते ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली सरकार इस महीने राजधानी में 200 नई इलेक्ट्रॉनिक बसों का शुभारंभ करेगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने आज परिवहन विभाग और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बैठक के दौरान बताया कि दिल्ली में वर्तमान में 4000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य इस वर्ष के अंत तक इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाकर 7500 तक पहुंचाना है, जिससे राजधानी में स्वच्छ और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा मिल सके। परिवहन मंत्री ने कहा कि दिल्ली में ग्रीन मोबिलिटी को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शहर के 44 बस डिपो में ईवी चार्जिंग ढांचा स्थापित किया जा चुका है और कई अन्य डिपो में चार्जिंग नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। बैठक में भलसवा में लैंडफिल साइट की रिक्लेम जमीन पर लगभग 20 एकड़ में नया अंतरराज्यीय बस टर्मिनल बनाने की योजना की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज सर गंगाराम अस्पताल द्वारा आयोजित चिकित्सा क्षेत्र में महिला की भागीदारी कार्यक्रम में भाग लिया। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि महिलाओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करने में इस संस्थान की भूमिका सराहनीय रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अस्पताल सेवा, समर्पण और उत्कृष्ट चिकित्सा परंपरा का एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा है। उन्होंने कहा कि दशकों से यह संस्थान लाखों मरीजों के उपचार और उनके भरोसे का मजबूत आधार बना हुआ है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि डॉक्टर्स, नर्स, शोधकर्ता और स्वास्थ्य कर्मी के रूप में अनेक महिलाएं अपनी प्रतिभा, परिश्रम और सेवा भावना से समाज को स्वस्थ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।
डॉक्टरी एक बड़ा डिफिकल्ट जॉब प्रोफाइल है और मैं चाहती हूँ कि हर महिला अपनी फील्ड में अपनी मेहनत से, अपने साहस से आगे बढ़े। हमारी हजारों बेटियां डॉक्टर बन करके आगे आएं और हम सब अपनी उन बेटियों को सपोर्ट करते हुए उन्हें पूरा मौका दें कि वो अपनी पढ़ाई कर सके।
दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह ने आज दिल्ली नगर निगम मुख्यालय में बागवानी अपशिष्ट के संग्रहण के लिए 48 टिपर ट्रकों को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन नए वाहनों की तैनाती से दिल्ली में बागवानी कचरे के संग्रहण और ढुलाई की व्यवस्था को मजबूती मिलेगी तथा स्वच्छता व्यवस्था और अधिक बेहतर होगी। महापौर ने कहा कि इन वाहनों के शामिल होने से उद्यान विभाग के बागवानी अपशिष्ट संग्रहण वाहनों की कुल संख्या बढ़कर 74 हो जाएगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि राजपुर रोड पर सीवर लाइन बिछाने के कार्य को देखते हुए आज से 25 मार्च तक विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया है कि राजपुर रोड पर 300 मिलीमीटर व्यास की सीवर लाइन डाली जा रही है। इससे राजपुर रोड, मॉल रोड, महात्मा गांधी मार्ग, चौबूर्जा मार्ग, भीखू राम जैन मार्ग, शामनाथ मार्ग और लोक निवास मार्ग पर यातायात को नियंत्रित किया जाएगा। इस दौरान राजपुर अथॉरिटी मोड से दिल्ली नगर निगम चौक तक राजपुर रोड मालवाहक वाहनों के लिए बंद रहेगा। इसके अलावा नगर निगम चौक से पीएस सिविल लाइन्स रेड लाइट की ओर से जाने वाला मार्ग मालवाहक वाहनों के लिए चालू रहेगा। यातायात पुलिस ने यात्रियों को सलाह दी है कि प्रभावित मार्ग पर जाने से बचें तथा सड़क किनारे वाहन खड़े ना करें। ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आहार 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया है। यह खाद्य और आतिथ्य उद्योग से जुड़ा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है। इस मेले का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया। इस अवसर पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान भी उपस्थित रहे।
5 दिवसीय मेले में खाद्य उत्पाद प्रोसेसिंग तकनीक, पैकेजिंग सिस्टम, होटल उपकरण और कोल्ड चेन से जुड़ी आधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन किया जा रहा है। मेले को संबोधित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत करते समय सरकार ने घरेलू हितधारकों, विशेष रूप से किसानों, मछुआरों और लघु तथा उद्यमों के हितों की सावधानी पूर्वक रक्षा की है। इस मेले में करीब 1,800 प्रदर्शक भाग ले रहे हैं, जिनमें 155 विदेशी कंपनियां शामिल हैं। 1,00,000 से अधिक वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले इस आयोजन में लगभग 17 देशों की भागीदारी है। इस मेले में इटली को इस बार साझेदार देश बनाया गया है। प्रदर्शनी में केवल पंजीकृत व्यापारिक आगंतुकों को ही प्रवेश की अनुमति है। यह रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेगी। इसके अलावा मेले में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, जैविक उत्पादों, डेयरी उत्पादों, मसालों और पेय पदार्थों की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिससे उद्योग को नए व्यापार और निर्यात के अवसर मिलेंगे। ईशानी यादव के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक बड़े अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह गिरोह उत्तर प्रदेश के बरेली, शामली, सहारनपुर और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सक्रिय था। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने CISF के स्थापना दिवस के अवसर पर सभी वीर जवानों और उनके परिजनों को बधाई दी। दिल्ली नगर निगम ने धूल रहित दिल्ली अभियान के तहत शहर में धूल प्रदूषण को कम करने और स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके तहत मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों की तैनाती और उनके संचालन समय को बढ़ाया गया है। नगर निगम के अनुसार वर्तमान में 52 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें प्रमुख सड़कों की सफाई के लिए तैनात हैं। दिल्ली में आज दिनभर मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए। पूर्व राजनयिक तरनजीत सिंह संधू कल दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने दिल्ली और फरीदाबाद को उत्तर प्रदेश के जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ने के लिए नई सड़क निर्माण परियोजना को मंजूरी दी। राजपुर रोड पर सीवर लाइन बिछाने के कार्य के मद्देनजर आज से 25 मार्च तक विशेष यातायात व्यवस्था लागू। राजपुर अथॉरिटी मोड़ से दिल्ली नगर निगम चौक तक राजपुर रोड मालवाहक वाहनों के लिए बंद रहेगा। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आहार का आज नई दिल्ली में शुभारंभ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।